आदरणीय भिक्षु संघ, धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, धर्म गंगा के प्रवाह का आज ये तीसरा दिन गंगा के तट पर फिर एकत्र हुए हैं। धर्म की गंगा अच्छी लगती है, गंगा का कल कल निनाद कानों को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन प्यासा आदमी केवल गंगा की लहरियों को देख के चला जाए, गंगा का कल कल निनाद सुनकर चला जाए और गंगा के पवित्र जल से अपनी प्यास नहीं बुझाए, तो उसे गंगा का पूरा लाभ नहीं मिला। गंगा के जल से अपनी प्यास बुझाकर तृप्त होना है, सही माने में अपना कल्याण करना है, अपना मंगल करना है। लेकिन हर समझदार आदमी को ये अवश्य देखना होता है कि ये गंगा सचमुच धर्म की गंगा है ना, इसका पानी सचमुच निर्मल है, स्वच्छ है, स्वास्थ्यकारी है। बिना समझे हुए किसी बात को अंधविश्वास से स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनन करना, चिंतन करना हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, तो खूब अच्छी तरह समझ करके ही अगला कदम उठाना चाहिए। अपने यहाँ एक कहावत चलती है और ठीक ही चलती है कि गुरु कीजे जान कर, पानी पीजे छान कर, गुरु कीजे जान कर। बिना जाने समझे हुए किसी की बातों में नहीं आ जाना चाहिए, तो पहले खूब अच्छी तरह अपने तर्क के तराजू पर तोल करके, अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस करके समझना चाहिए कि ये जो धर्म की बात कही जा रही है वो युक्ति संगत तो है, न्याय संगत तो है ना, बुद्धि संगत तो है ना। जो बात हमारी सामान्य बुद्धि के ही स्वीकार करने योग्य न हो उसे हम कैसे धारण करें। तो पहले बुद्धि के स्तर पर समझने के लिए गंगा के तट पर इस तरह एकत्र होना अच्छा ही है, लेकिन साथ साथ ये भी समझते रहना चाहिए कि प्यास तो बुझेगी गंगा के पवित्र जल को पीने से। धर्म धारण करने से ही उसका लाभ होता है। धर्म की केवल चर्चा सुन के रह जाएं, धर्म पर केवल वाद विवाद करके रह जाएं, अथवा धर्म को अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकार करके रह जाएं, तो धारण तो नहीं किया ना। और जब तक धारण नहीं किया तब तक उसका लाभ नहीं हुआ। मानव जाति के इतिहास में जब कोई महापुरुष आता है तो लोगों को शुद्ध धर्म सिखाता है। कोई व्यक्ति जो उस मुक्त अवस्था तक पहुंच चुका है वह लोगों को मुक्त होने का रास्ता सिखाता है, बड़े प्यार से सिखाता है। लोग उसके बताए हुए रास्ते पर चले नहीं, केवल उसकी प्रशंसा करके रह जाएं, केवल उसका गुणगान गा के रह जाएं, केवल उसकी वाणी का पाठ करके रह जाएं, तो भाई लाभ कैसे मिले। उस लाभ से वंचित रह गए। कोई व्यक्ति घने अंधकार में, काली रात में, घनघोर जंगल में भटक गया। रात हो गई, चारों ओर खतरा ही खतरा, जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल, कैसे बाहर निकले? तो किसी के मन में करुणा जागी, उसके हाथ में एक मशाल लाके पकड़ा दी। देख, ये मशाल है, इसकी रोशनी के सहारे 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 तू इस खतरनाक जंगल के बाहर निकल जाएगा, खतरे से मुक्त हो जाएगा। पागल आदमी, उस मशाल का उसने कोई उपयोग नहीं किया। जिस डंडे पर वो मशाल लगी है, उस डंडे को अपनी छाती से लगा लिया। ये हमारे महापुरुष का दिया हुआ डंडा, ये हमारे महापुरुष का दिया हुआ डंडा। ऊपर की मशाल बुझ गई, रोशनी बुझ गई, धर्म का लाभ नहीं उठाया। सब के हाथों में डंडे रह गए, किसी के डंडे पर रोशनी नहीं, और फिर परस्पर लड़ते हैं। ये मशाल देने वाला जो हमारी परंपरा का महापुरुष है, वो सचमुच अच्छा, और बाकी सब गए गुजरे। मेरा डंडा ही अच्छा, मेरा डंडा मोटा, तेरा डंडा छोटा, मेरा डंडा लंबा, तेरा डंडा ऊंचा, लड़े जा रहे हैं। धर्म धर्म नहीं रहा ना, संप्रदाय हो गया। धारण करे तो धर्म होता है, धारण नहीं करे तो वही संप्रदाय बन जाता है। तो लड़े जा रहे हैं, सब अपने अपने डंडे को पकड़े हुए लड़े जा रहे हैं, किसी के डंडे पर रोशनी का नामो निशान नहीं, सबकी रोशनियां बुझ गई। क्या हालत बना ली हमने। कोई आदमी बहुत प्यासा है, कोई महापुरुष उसे ला करके अमृत देता है, ये पी तेरी तृषा बुझ जाएगी, तेरी प्यास मिट जाएगी। रोगी है, उसे अमृत की औषधि देता है, ये पी तेरा रोग दूर हो जाएगा, तेरा दुख दूर हो जाएगा। तो किसी पात्र में ही देगा। पात्र छाती से लगा लिया, ये मेरे महापुरुष का दिया हुआ पात्र, ये मेरे महापुरुष का दिया हुआ पात्र। अमृत की एक बूंद नहीं चखी, सबके हाथों में अपने अपने पात्र। तेरा पात्र मट्टी का, मेरा लकड़ी का, तेरा लकड़ी का, मेरा लोहे का, तेरा लोहे का, मेरा पीतल का, तेरा पीतल का, मेरा सोने का। अरे क्या करें, सोने का भी है तो सब में छेद हो गए, और अमृत कब का बह गया, एक बूंद अमृत नहीं रह गया। और वो पात्र, खाली पात्र, खोखला पात्र, उसे छाती से लगाए हुए परस्पर लड़ रहे हैं। धर्म जब संप्रदाय बन जाता है तो यही दशा होती है, और धर्म को जब धारण न करे तो संप्रदाय बन ही जाएगा। धारण करते रहें तो धर्म धर्म रहेगा, बड़ा कल्याण करेगा। धारण नहीं करेंगे तो संप्रदाय बनेगा, इस नाम का बनेगा कि उस नाम का बनेगा, पर संप्रदाय बनेगा, और आपस में झगड़े करवाएगा, खून खराबा कराएगा, द्वेष दौर्मनुष्य बढ़ाएगा। धर्म के नाम पर अशांति ही अशांति फैलेगी, धर्म के नाम पर अधर्म ही अधर्म फैलेगा। धारण करना जरूरी है। धर्म और संप्रदाय का ये भेद खूब अच्छी तरह समझ लेता है तो धर्म के रास्ते चलने लगता है, संप्रदाय से घृणा नहीं करता। धर्म घृणा करना नहीं सिखाता, धर्म द्वेष करना नहीं दिखाता। अच्छा रास्ता है, सही रास्ता है, मुझे उस पर चलना है। जो उस पर नहीं चल रहे हैं उनके प्रति करुणा जागती है, मैत्री जागती है, सद्भावना जागती है। अरे बेचारे भटके हुए हैं, धर्म के नाम पर भटके हुए हैं, इन्हें भी शुद्ध धर्म का रास्ता मिल जाए तो कदम कदम चलते हुए अपने दुखों से छुटकारा पा लेंगे, अपने बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, बस ऐसी करुणा जागेगी। धर्म के रास्ते चलने वाला व्यक्ति लड़ाई फसाद झगड़े फसाद में नहीं पड़ेगा। झगड़े फसाद में पड़ता है तो समझ लेना चाहिए धर्म नहीं है, अभी बेचारा संप्रदाय में उलझा है। जब तक अपने को हिंदू होने का गर्व करता है, बौद्ध होने का गर्व करता है, जैन होने का गर्व करता है, ईसाई मुस्लिम सिख इत्यादि होने का गर्व करता है, तो कहीं कुछ कमी रह गई, बहुत बड़ी कमी रह गई। उसके लिए संप्रदाय प्रमुख हो गया, धर्म प्रमुख नहीं हुआ। जो जो व्यक्ति संप्रदाय में खूब बलवान होता चला जाएगा, वो धर्म में दुर्बल होता चला जाएगा। जो जो व्यक्ति धर्म में बलवान बनता चला जाएगा, वो संप्रदाय में दुर्बल होता चला जाएगा। धर्म तो सबका है, सबके लिए कल्याणकारी है। कोई अपने को हिंदू कहे कि बौद्ध कहे कि जैन कहे कि ईसाई कहे, चाहे जिस नाम से पुकारे, जरा धर्म के रास्ते चले तो वही लाभ मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा। धर्म इस बात का पक्षपात नहीं करेगा कि मुझे धारण करने वाला व्यक्ति अपने को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि मुसलमान कहता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई पक्षपात नहीं। जो धारे वही निहाल हो गया, जो धारे वही मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया। जैसे कल कहा, पहला कदम धर्म के रास्ते चलना है, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म ईसाई धर्म नहीं, धर्म के रास्ते चलना है तो पहला कदम शील सदाचार का। शरीर या वाणी से कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों के सुख शांति भंग होती हो, जिससे अन्य प्राणियों का अहित होता हो, अमंगल होता हो, उनकी हानि होती हो, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसे शील पालन कहा, इसे सदाचार कहा। शील और सदाचार पर क्या हिंदुओं की मोनोपोली है, क्या बौद्धों की मोनोपोली है, क्या जैनियों की मोनोपोली है, कि सिखों की, कि ईसाइयों की, मुसलमानों की? अरे मनुष्य मात्र शील का पालन करके सुखी हो सकता है, होता ही है। अपने को चाहे जिस नाम से पुकारे, सदाचार का जीवन जीने लगा, शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे औरों को कष्ट पहुंचे, तो भला आदमी हो गया, नेक इंसान हो गया, सज्जन हो गया, संत हो गया, धार्मिक हो गया, ऐसा व्यक्ति धर्मिष्ठ हो गया। अब उसे आगे का कदम उठाते हुए भीतर की सच्चाइयां जब देखना आ जाएगा, सीख जाएगा, तो उसे धर्म खूब स्पष्ट मालूम होगा कि अरे ये जो मैं शील सदाचार का जीवन जी रहा हूं, इससे समाज पर कोई एहसान नहीं कर रहा, किसी की हत्या नहीं करता तो उस पर एहसान कर रहा हूं, ऐसा नहीं, किसी की चोरी नहीं करता तो उस पर एहसान कर रहा हूं, ऐसा नहीं, व्यभिचार नहीं करता, कि झूठ नहीं बोलता, कि कड़वी बात नहीं बोलता, कि चुगली की बात नहीं बोलता, परनिंदा की बात नहीं बोलता, तो किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूं, खूब समझने लगेगा। धर्म धारण करे और अंतर्मुखी होकर के सच्चाई को जानने का काम शुरू कर दे, कुदरत का सारा रहस्य खुल जाता है, कुदरत का कानून खूब समझ में आने लगता है, विश्व का विधान खूब समझ में आने लगता है, लॉ ऑफ नेचर खूब समझ में आने लगता है। उन दिनों की भाषा में उसे धम्म नियामता कहा, धर्म के नियम खूब समझ में आने लगते हैं। धम्म स्थिति कहा, धर्म की स्थिति क्या है, कैसा है धर्म, खूब समझ में आने लगता है। खूब समझ में आता है कि मैं वाणी और शरीर से दुष्कर्म तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पहले मन को मैला न कर लूं, और मन को मैला करते ही मुझे दंड मिलने लगता है, मैं तुरंत व्याकुल हो जाता हूँ, मैं दुखियारा हो जाता हूँ, ये कुदरत का नियम। पुस्तकों के पढ़ने से समझ में नहीं आता अच्छी तरह, आएगा तो केवल बुद्धि के स्तर पर आके रह जाएगा, तो बुद्धि विलास होके रह जाएगा। अनुभव के स्तर पर ये बात आएगी तब समझ में आएगा। मन सच्चे पद ठेन भासतिवा करोतिवा, मन साचे पद उठे रहे। प्रदुष्ट मन, मैले मन के आधार से कोई वाणी का काम करे कि कोई शरीर का काम करे तो क्या होता है?
तत्तो नंग दुख मन वेती चक्कंग वतु पदं।
तो उसके पीछे दुख यूं लग जाएगा, यूं लग जाएगा जैसे बैलगाड़ी पर जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग गया। बैलगाड़ी पर जुता है ना बैल, जहां भागे चक्का उसके पीछे है, जहां भागे चक्का उसके पीछे है। दुख पीछे लग गया। कैसे लग गया भाई? बिना अंतर्मुखी होकर के धर्म की ये बात समझ में आती नहीं, बस श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा है ना, तो ठीक ही है, हम शरीर और वाणी से दुष्कर्म करेंगे तो हमारे पीछे दुख लग ही गया, मरने के बाद अगले जन्म में नरक मिलेगा, ये होगा वो होगा। अरे होगा भाई, अब क्या हो रहा है? भीतर देखना शुरू करेगा तो देखेगा अब क्या हो रहा है। वो कहते हैं चक्का पीछे लग गया, दुख पीछे लग गया, प्रतिक्षण तेरे साथ दुख है। एक दुख मरने के बाद आएगा उसकी बात नहीं, वो भी आएगा ही, इस समय तेरे पीछे दुख लग गया, प्रतिक्षण प्रतिक्षण दुख ही दुख, दुख ही दुख। कैसे समझ में आए? अंतर्मुखी होगा तो देखेगा कि जैसे ही मन को मैला किया, मनसा चे पदुठे ने, मन को प्रदुष्ट कर लिया, मैला कर लिया, जैसे ही किया दुखी हो गया। क्रोध जगा करके कि वासना जगा करके कि भय जगा करके कि अहंकार जगा करके कि ईर्ष्या जगा करके कि मात्सर्य जगा करके, कोई भी विकार जगा करके जब कोई वाणी या शरीर का काम किया तो आधार तो मन है और मन का वो विकार है, तुरंत व्याकुल हो गया। क्यों किया? बाहर की कोई ऐसी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थिति, कोई घटना दिखाई दी, उसके प्रति मन में एक प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई, विकार जगाया। ये ऊपरी ऊपरी बात, और गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा प्रतिक्रिया भी भीतर ही हुई, भीतर के कारण से ही हुई। ये ऊपरी ऊपरी बात, किसी आदमी ने गाली दी, अपमान किया तो बहुत बुरा लगा, बदले में मैंने भी गाली दी, मैंने हाथ उठा दिया, पास कोई पिस्तौल पड़ी थी तो धाएँ मार दिया उसे, शरीर से दुष्कर्म हो गया, वाणी से दुष्कर्म हो गया। मन मैला है ना, भीतर देखना नहीं आया, देखना आया तो देखा कितना व्याकुल हुआ। उस व्यक्ति ने जो किया वो उसकी समस्या है, उस व्यक्ति ने गाली दी कि अपमान किया तो ऐसा करते हुए उसने अपने मन में क्रोध जगाया, अन्यथा कैसे करता? क्रोध जगाया तो व्याकुल हो गया, अरे बड़ा दुखियारा है। विपश्यना में जैसे जैसे पकता चला जाएगा, वैसे वैसे अपने भीतर की सच्चाई को देखते देखते दूसरों के भीतर की सच्चाई भी समझने लगेगा। मैं जब जब क्रोध जगाता हूँ बड़ा दुखियारा हो जाता हूँ, बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ। ये आदमी गालियां पक रहा है, अपमान कर रहा है, क्रोध जगा रहा है, बड़ा व्याकुल है रे, बड़ा दुखियारा है रे, अरे ये जल रहा है। इस जलते हुए पर अंगारे फेंकने को कैसे जी चाहेगा? इस जलते हुए पे ठंडा जल फेंकें, इस बेचारे की अग्नि बुझ जाए, इसका क्रोध बुझ जाए, इसे सुख मिले, इसे शांति मिले। ऊंची अवस्थाएं भी पचना की, पर धर्म की ये अवस्था काम करते करते आने ही लगती है। अपने भीतर देखता है, अगर मैंने प्रतिक्रिया की, किसी ने मुझ पर क्रोध करके अपशब्द कहे मुझे और मैंने प्रतिक्रिया की क्रोध की तो मुझे दंड मिलने लगा, मैं व्याकुल हुआ। और उससे बड़ी बात एक ये हो गई, खतरनाक बात, हर अनचाही घटना पर, अब ऐसा स्वभाव बनता चला जाएगा, किसी अनचाही घटना पर मैंने क्रोध किया, अब जीवन में आगे कभी अनचाही घटना नहीं होगी इसकी कोई गारंटी है? फिर कोई अनचाही घटना हुई, फिर क्रोध किया, फिर कोई अनचाही घटना हुई, फिर क्रोध किया, कोई मनचाही घटना नहीं हुई, फिर क्रोध किया, ये स्वभाव बनता जा रहा है, स्वभाव बनता जा रहा है मानस का, अंतर मन की गहराइयों में एक ऐसा स्वभाव शिकंजा, और उस स्वभाव शिकंजे में इस प्रकार गिरफ्त हो गए, बंदी हो गए कि जब देखो तब प्रतिक्रिया करते हैं, क्रोध जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, क्रोध जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, दुख पीछे लग गया, क्योंकि वो स्वभाव पुष्ट हुए जा रहा है, पुष्ट हुए जा रहा है, दुख पीछे लग गया। जब जब क्रोध जगाता है फिर दुखी होता है, जब जब क्रोध जगाता है फिर दुखी होता है, और क्रोध जगाने का तो स्वभाव बना लिया, जगाया ही जा रहा है, उसे बाहर निकलने का कोई काम ही नहीं करता, समझता भी नहीं कि मैं कैसे बाहर निकलूं, निकलना तो बहुत दूर की बात हुई, धर्म ही नहीं समझता। ये धर्म है, बौद्ध धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदू धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, धर्म है। धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं, विश्व के विधान को कहते हैं, निसर्ग के नियमों को कहते हैं। ये नियम है निसर्ग का कि जैसे ही मैले चित्त से तूने कोई दुष्कर्म किया, वाणी का या शरीर किया, दुख तेरे पीछे 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 लग गया। इद तपति पिच तपति पापकारी उभयत्थ तपति। इस तरह का मैल मन से कोई बुरा काम कर दे, पाप का काम कर दे, यहां भी संतापित होगा, संतापित हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, आगे के लिए भी संताप ही संताप, संताप ही संताप, दुखियारा ही दुखियारा, दुख पीछे लग गया ना। ठीक इसी प्रकार धर्म का नियम, प्रकृति का नियम, निसर्ग का नियम, कुदरत का नियम, मन सच्चे पसन्ने ने भासती वा करोती वा। प्रसन्न चित्त से, निर्मल चित्त से, उजले चित्त से वाणी का कोई काम कर दे, शरीर का कोई काम कर दे, तो एक ये नियम प्रकृति का, धर्म का, ये एक धर्म नियामता, तत्तो नंग सुखम मन वेती छाया वै अन पायनी। अब उसके पीछे सुख लग जाएगा, ऐसे ही लग जाएगा जैसे हमारे पीछे हमारी छाया लगी है, जहाँ जाएं हमारी छाया साथ है, जहाँ जाएं छाया हमारे साथ है, सुख लग गया। कैसे लग गया? अंतर्मुखी होके देखेगा तो बात समझ में आएगी। मनसा चे पसन्ने ने, निर्मल चित्त है, निर्मल चित्त है तो मैत्री से भरा है, करुणा से भरा है, सद्भावना से भरा है। जैसे ही मैत्री जागी, करुणा जागी, सद्भावना जागी, कुदरत ने हमें इनाम देना शुरू कर दिया, धर्म ने हमें इनाम देना शुरू कर दिया, पुरस्कार देना शुरू कर दिया, बड़ी शांति आई, बड़ा सुख आया। तो इस समय जो वाणी और शरीर का कर्म किया निर्मल चित्त से, वो तो सुख लाया ही। अब धीरे धीरे ये स्वभाव बनता जाएगा, हर बार बाहर कोई घटना अनचाही हो कि मनचाही हो, हम अपने मन को मैला नहीं होने देंगे, चाहे जैसी घटना घटे बाहर, हम नहीं कोई विकार जगाएंगे, हम अपने मन को निर्मल रखेंगे, मैत्री जगाएंगे, करुणा जगाएंगे। अब ऐसा स्वभाव बनने लगा मानस का, ऐसे स्वभाव में जो काम करेगा, जो काम करेगा अच्छा ही करेगा, कुशल ही करेगा, मैत्री से भरा हुआ करेगा, करुणा से भरा हुआ करेगा, तो सुख साथ है, साथ 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 सुख चलेगा। इधनंदति पेचनंदति पुण्यकारी उभयत्थनंदति कत पुण्यो उभयत्थनंदति। जरा पुण्य का काम करे, क्या पुण्य होता है? चित्त को पुनीत करे सो पुण्य, चित्त को निर्मल करने वाला काम करें, मैत्री जगाएं, करुणा जगाएं, उसमें विकार नहीं जगने दें, और फिर देखें कि इस प्रकार आनंद आने लगा। अभी भी आनंद आता है और आगे भी आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ये धर्म के नियम है भाई, जो सब पर लागू होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग पर, एक विशिष्ट वर्ण पर, एक विशिष्ट जाति पर, एक विशिष्ट रंग रूप वाले लोगों पर, ऐसा तो नहीं होता। जो जो अपने मन को मैला करेगा और मैला करके कोई शरीर या वाणी का काम करेगा, दुखियारा हो ही जाएगा। जो जो अपने मन को निर्मल करेगा और निर्मल करके वाणी और शरीर का जो काम करेगा, सुखियारा हो ही जाएगा। कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। इतनी बात समझ भी जाए, बुद्धि से समझ भी जाए, हमें शीलवान रहना चाहिए। शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, ये खूब समझ गया। पर जैसे कल कहा, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। खूब जानता हूँ धर्म को, प्रवृत्ति नहीं होती, क्या करूँ। खूब जानता हूँ अधर्म को, निवृत्ति नहीं होती उससे, क्या करूँ। क्यों नहीं होती? जो महापुरुष धर्म सिखाएगा, वो केवल धर्म के उपदेश दे के नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा है तो महापुरुष नहीं है, कोई ज्ञानी है। खूब बढ़िया प्रवचन देना जानता है, लोगों पर अपनी छाप डालना जानता है, लोगों में अपनी श्रद्धा जगाना जानता है, बस लोक कल्याण नहीं जानता। जो सचमुच महापुरुष होगा तो बताएगा कि धर्म कैसे धारण करो, ये धर्म है और तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, तो उस ओर तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो। ये अधर्म है, तुम्हारी निवृत्ति नहीं है, तो निवृत्ति कैसे हो। मन को वश में करना सीखो। जब मन ही तुम्हारा वश में नहीं है, तो अच्छे काम की ओर तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे होगी रे। बुरे काम से तुम दूर कैसे होगे, विरत कैसे होगे। मन वश में करना सीखो। अनेक ऋषियों ने, अनेक मुनियों ने, अनेक सद्गुरुओं ने, अनेक अरहंतों ने, अनेक बुद्धों ने, अपने यहाँ के अनेक महापुरुषों ने यही सिखाया, मन के गुलाम मत बनो, मन के मालिक बनो। मन को अपने वश में करना सीखो, मन के वश में मत हो जाओ। तो बहुत से तरीके अपनाए गए। बहुत पुराने समय से अपने यहाँ आध्यात्म के प्रयोग होते रहे। ये जितने ऋषि हुए, आज की भाषा में कहें तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए। ऋषि शब्द का अर्थ ही ये है कि जो ऋत की एषणा करता है, गवेषणा करता है, पर्यवेषणा करता है, वो ऋषि। माने अपने भीतर कुदरत के कानून की, विश्व के विधान की, या यूँ कहें धर्म के नियामता की अपने भीतर खोज करता है। क्या होने से क्या हो जाता है, क्या नहीं होने से क्या नहीं होता। तो दुखी होते हैं, दुख से कैसे छुटकारा पाएं, मन वश में नहीं है, मन को कैसे वश में करें, मन को कैसे वश में करें। एक बहुत सरल सा तरीका चला, आज भी चल रहा है, कि किसी एक शब्द को दोहराते चले जाओ, बार 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 बार, भले वाणी पर दोहराओ और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मन ही मन दोहराओगे, बार 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 दोहराते दोहराते दोहराते। जैसे माँ बच्चे को लोरी देती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, वो बार 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 वो शब्द सुनता है, सो जाता है। ऐसे हमारा मानस भी बार 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 किसी शब्द को सुनते 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 सो जाएगा, तो लगेगा चित्त एकाग्र हो गया। एकाग्र हुआ ही, अब क्या शब्द इस्तेमाल करे, कोई शब्द इस्तेमाल करे, ये घड़ी बांध रखी है, इसी को दोहराता चला जाए, घड़ी 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 घड़ी, एकदम मन एकाग्र हो जाएगा। लेकिन आसान नहीं है। घड़ी 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 क्यों बोलेगा कोई, कैसे बोलेगा, ऊबने लगेगा। तो अपने यहाँ के समझदार लोगों ने ये समझाया कि देख भाई, जिस किसी देवी में, किसी देवता में, किसी ईश्वर में, किसी ब्रह्म में, किसी अल्लाह मियाँ में, किसी सदगुरु में, किसी महापुरुष में, जिस किसी में तेरी श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, उसी का नाम बोल। अब बहुत श्रद्धा है तो आसान हो गया, जिस पर बहुत श्रद्धा है बार 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 उसका नाम लेगा। और फिर जैसे बच्चों को समझाते हैं ऐसा समझाया गया, कि देख अमुक देवी का, अमुक देवता का, अमुक ईश्वर का तू बार बार नाम लेगा ना तो वो बड़ा प्रसन्न होकर के, खुश होकर तुझे तार देगा, मानो वो अपना नाम सुनने का बड़ा शौकीन है। अरे ये तो कहने की बातें, कोई शब्द दोहरा रहे हैं ना, और ऐसा शब्द जिसके प्रति हमें श्रद्धा है, दोहराना आसान हो गया। दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, मन शांत हुए जा रहा है, एकाग्र हुए जा रहा है, बात बन गई, एकाग्रता का एक रास्ता मिला। ठीक ऐसे ही एक और रास्ता चला, किसी देवी, किसी देवता, किसी ईश्वर, किसी ब्रह्म, किसी अल्लामिया, किसी महापुरुष, सत्पुरुष, कोई सद्गुरु जिसके प्रति भी बहुत श्रद्धा है, उसका एक चित्र सामने रखो या उसकी मूर्ति सामने रखो और देखते रहो आँख खोल करके। कुछ देर देखते रहे देखते रहे, फिर आँख बंद कर ली, फिर कुछ देर देखते रहे फिर आँख बंद कर ली, यूँ करते जाओ। यूँ करते 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 एक अवस्था आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी कि बंद आँखों के सामने भी वो चित्र आने लगेगा, बंद आँखों के सामने वो मूर्त आने लगेगी। अब जैसे ही वो मूर्त बंद आँखों के सामने आने लगी, अब उस पर ध्यान लगाओ, आँख खोलने की ज़रूरत नहीं, बंद आँखों उसी पर ध्यान करो। यूँ करते 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 चित्त एकदम एकाग्र हो जाएगा। ये एक तरीका, अच्छा काम किया। नाम बार बार लिए जाएं या कोई रूप, कोई आकृति बार बार मन में उसकी कल्पना करते जाएं, चित्त एकाग्र होगा। और तरीके अपनाए गए, कोई अच्छा चिंतन करो और दोहराए जाए उस चिंतन को। जिस किसी दार्शनिक मान्यता में तुम्हारी बहुत श्रद्धा है, उस दार्शनिक मान्यता का चिंतन करना शुरू कर दो। बार 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 उसका चिंतन करो। सारा विश्व ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ। सारा संसार ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। बार बार चिंतन करो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, मैं अमुक हूँ। बार 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 चिंतन करते करते मानस पर एक लेप लगने लगा। वो लेप धीरे 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 इतना मोटा होता चला जाएगा कि मन एकदम शांत होता चला गया, एकाग्र होता चला गया। इसी तरह से कोई ऑटो सजेशन देनी शुरू कर दी, अपने मन को सुझाव देना शुरू कर दिया, और किसी प्रकार का, मैं बड़ा निर्मल हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं बड़ा निर्मल हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ। बार 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 दोहराए जाए, दोहराते 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 मन पर उसके लेयर लगते जा रहे हैं, उसी बात के लेप लगते 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 जैसे मन एकदम शांत हो गया। ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग अपने यहाँ हुए और उनका लाभ हुआ, आज भी लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन जिसको धर्म के रास्ते जाना है, उसका अपना एक लक्ष्य है। केवल चित्त को एकाग्र कर लेना उसका लक्ष्य नहीं है। चित्त तो एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि एकाग्र चित्त एक ऐसा साधन है जिस साधन के जरिए हम साध्य को प्राप्त कर सकेंगे, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम लक्ष्य चित्त को एकाग्र कर लेना नहीं है, अंतिम लक्ष्य चित्त को निर्मल कर लेना है, विकारों से नितांत विमुक्त कर लेना है। जब तक लेश मात्र भी विकार रह गए, अंतर्मन की गहराइयों में रह गए, जिसे उन दिनों की भाषा में अनुशय क्लेश कहा, वो विकार जो सोए सोए हमारे अंतर्मन के साथ चले आ रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसे अनुशय क्लेश स्लीपिंग वॉल्केनोज हैं, कभी भी फूट पड़ेंगे, ऐसी ज्वालामुखी है, हमें फिर व्याकुल बना देगी। उनकी जड़ें निकलनी चाहिए, चित्त नितांत निर्मल होना चाहिए, लक्ष्य है। ऐसे लक्ष्य के लिए हमको चित्त एकाग्रता का ऐसा आलंबन चुनना होगा जो कि चित्त को एकाग्र करते हुए हमको अपने विकारों की गहराइयों तक पहुंचा दे, जहां से कि विकार निकलने हैं। और ये तब होगा जबकि अपने भीतर की सच्चाइयों को जानने में वो सहायक हो जाए। हम किसी शब्द को बार बार दोहराते 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 हमने अपने मन को सुला दिया, सो गया, अच्छी बात है, उसमें कोई हानि नहीं हुई, लेकिन कमी रह गई। हमें जागरूक रह करके अपने अंतर मन की गहराइयों तक पहुंचना है, जहां विकारों का उद्गम होता है, जहां विकार जन्मते हैं और जन्म करके पनपते हैं और संग्रहित रहते हैं उस अवस्था पर पहुंच नहीं पाए, हमने बीच में एक दीवार खड़ी कर ली। हर शब्द जो दोहराएंगे उसकी एक तरंग होगी। कोई शब्द दोहराएं, हर शब्द की अलग अलग तरह की तरंग होती है, और कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी तरंग बड़ी तेज होती है, उनको उन दिनों की भाषा में कहा बीज मंत्र हैं। उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो शब्द ऐसे हैं कि बार 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 दोहराने से तरंगे पैदा होंगी, जैसे ओंग, एंग, रिंग, क्लिंग, ऐसे जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया और वो झंझनाने लगा। तो बार 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 दोहराओगे, एक तरह की तरंगों में सारा का सारा मानस, उस पर वो तरंग छा गई। अच्छा हुआ ऐसी तरंग ऊपर छा गई तो बाहर की दूषित तरंग हमारे भीतर आकर हमको कष्ट नहीं देगी, इतना तो अच्छा हुआ। लेकिन एक कमी रह गई कि ऊपर ऊपर ये बहुत अच्छी तरंग तो लग गई, लेकिन हमारे भीतर जो विकारों का संग्रह है वो वैसा का वैसा रह गया, उसको निकालने का काम कहाँ हुआ। तो हमें ये बनावटी तरंग से हमारा काम नहीं बनेगा। हमारे भीतर जो तरंग स्वाभाविक चल रही है अपने आप, क्रोध आता है तो कैसी तरंगें हमारे भीतर चलती है, द्वेष जागता है तो कैसी चलती है, वासना जागता है तो कैसी चलती है, ईर्ष्या होती है तो कैसी चलती है, भय होता है तो क्या कैसी तरंगें होती हैं, उसको जानना जरूरी, छुटकारा उससे लेना है। अंतर मन की गहराई में वो तरंगें चलती रहती हैं, उनको जाने बिना उनसे छुटकारा कैसे होगा। ऊपर ऊपर का लेप लगा तो बड़ी अच्छी बात हुई, उस तक पहुंचने के लिए अपने भीतर की सच्चाइयों को जानना पड़ेगा। कुदरत का कानून, विश्व का विधान, निसर्ग के नियम, धर्म नियामता जैसी बाहर है ठीक वैसी मेरे भीतर है। सब पर उसकी हुकूमत चलती है, हर प्राणी पर उसकी हुकूमत चलती है, निजीव सरजीव सब पर चलती है। कानून एक जैसा है सब जगह, लेकिन जो बाहर का कानून है उसे हम बुद्धि से समझ करके स्वीकार करते हैं। सारे प्राणी जरा धर्मा हैं, हम देख रहे हैं बुढ़ापा आता है सबको आता है। सारे प्राणी मरण धर्मा हैं, देखते हैं जो जन्मता है वो मरता है, बुद्धि समझ रही है देख रही है। तो सब कुछ अनित्य है अनित्य है ऐसा बुद्धि समझती है, बाहर बाहर की बातों को देख करके उसे अनुभव नहीं हुआ। और धर्म तभी धर्म होगा जबकि अनुभव होगा। केवल बुद्धि के स्तर पर जागा हुआ ज्ञान हमें मुक्त नहीं कर सकता, केवल पढ़ पढ़ा कर जागा हुआ ज्ञान, सुन सुना कर जागा हुआ ज्ञान हमें मुक्त नहीं कर सकता, हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें मार्गदर्शन दे सकता है। अपनी अनुभूति पर जागा हुआ ज्ञान मुक्त वो करेगा। तो अपनी अनुभूति पर वो कुदरत का कानून जो सब जगह एक सा है, बाहर भी भीतर भी, उसको अनुभूति पर जानना है तो 3.5 हाथ की काया के भीतर जानना पड़ेगा। हमारे भीतर जो हो रहा है उसे हम अनुभव कर सकते हैं, बाहर जो हो रहा है उस पर हम बुद्धि लगा सकते हैं। भीतर क्या हो रहा है इसे अनुभव करना है। ये सारा का सारा शरीर प्रपंच जिसे मैं मेरा मेरा किए जा रहा है, अरे ये क्या है, कैसा है? ये सारा का सारा चित्त प्रपंच जिसे मैं मेरा मेरा किए जा रहा है, कितना गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया इसके साथ, कितनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली इसके साथ। कोई इस मैं के नकली मैं, न ये शरीर मैं है न ये चित्त मैं है, फिर भी इनको मैं माने जा रहा है और इतनी आसक्ति इसके साथ पैदा कर ली। कोई इस मैं के खिलाफ एक शब्द कह दे कितना चिड़चिड़ाता है, कोई इस मैं के खिलाफ छोटा सा काम कर दे कितना चिड़चिड़ाता है, तो कितना आसक्त हो गया। आखिर ये है क्या, जैसे कहा गया नो दाई सेल्फ, अरे जानो अपने आप को कि क्या हो, मैं कौन हूं। ज्यादा अच्छा प्रश्न ये कि मैं क्या हूं, उसे जानूं तो सही क्या हूं, पुस्तकों पढ़ने से नहीं जान पाएगा। शरीर सोधे बिना उसार नहीं सा पड़े, शरीर सोधे बिना सार नहीं सा पड़े, पंडिता पार पा में नहीं पोथिया। अरे पंडित तो पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके सच्चाई को नहीं जान पाएगा, सार नहीं पकड़ में आएगा तुझे, शरीर के भीतर शोध करना शुरू कर देगा, खोज करना शुरू कर देगा, सार पकड़ में आ जाएगा, अन्यथा पार नहीं पहुंचेगा, भव सागर के पार नहीं पहुंचेगा। हमारे यहाँ के बहुत बड़े भगत ने ये बात कही, नरसिंह मेहता ने ये बात कही, खूब भक्ति करने के बाद भी ये समझ गया, शरीर के भीतर सच्चाई को अनुभूतियों से उतारे बिना कोई व्यक्ति भव सागर के पार नहीं हो सकता। अपने आप को जानना है, आपो जाने आपो आप, रोगन व्यापे तीनों ताप, आपो जाने आपो आप। जो अपने आप को जान गया, जो अपने आप को जान गया, उसके पास कोई भी भव रोग नहीं आ सकता, भव ताप नहीं आ सकता, सारे भव संसरण से मुक्त हो जाता है। अपने आप को जाने तो कैसे जाने, हर कदम हमारा इस काम के लिए हो कि हम अपने आप को जाने। कानून तो वही है, बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई रे, जन नानक बिन आपा चिने, कटे न भ्रम की काई रे। कानून तो वही है, बाहर भी भीतर भी, लेकिन जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपने आप की खोज नहीं पूरी की, तब तक भ्रम ही भ्रम रहेगा। जन नानक, जान गया नानक, केवल पुस्तक पढ़ के नहीं रह गया, केवल प्रवचन पढ़ के नहीं रह गया, कोई शास्त्र पढ़ करके कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। कौन से शास्त्र पढ़ करके बुद्ध बुद्ध हुआ, कि महावीर महावीर हुआ, कि अन्य कोई महापुरुष महापुरुष हुआ? अनुभूतियों से होता है, सत्य का साक्षात्कार करता है अपने भीतर। जब तक बाहर बाहर का ज्ञान है, तब तक केवल उसे मान रहा है, अपना ज्ञान नहीं है, पराया ज्ञान है, हम मान रहे हैं उसे। जब वो पराया ज्ञान अपना ज्ञान हो जाए, अपना ज्ञान हो गया तो जान गया, जान गया तो अपना ज्ञान हो गया। तो जन नानक बिन आपा चिन्हे, अपने आप को पूरी तरह पहचाने बिना, कटे न भ्रम की काई रे। भ्रम दूर नहीं होता, भीतर से नहीं जानता है तो अपने दुख का कारण बाहर देखता है, उस आदमी ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये घटना ऐसे घट गई, वो घटना ऐसे नहीं घटी, इसलिए मैं दुखी हो गया। अरे तूने भीतर की सच्चाई नहीं देखी ना। अरे बाहर की घटना चाहे जैसे घटे, अगर तू उस घटना की वजह से तेरे भीतर विकार नहीं जगाता, तू नहीं व्याकुल होता। उस घटना के घटने में और तेरे भीतर दुख जागने में, इन दोनों के बीच की कड़ी कहाँ गई, वो तो तुझे पता ही नहीं ना। बीच की कड़ी ये कि तू भीतर विकार जगाने लगा, विकार जगाया इसलिए व्याकुल हुआ। ये बात अंतर्मुखी हुए बिना कैसे होगा? अपने भीतर सच्चाई को जानने के लिए मन को एकाग्र करने का काम भी ऐसा हो जो हमको अपने बारे में सच्चाई जानने में मदद करे, एकाग्रता भी लाए और अपने बारे में क्या सच्चाई है इसे जानने का काम इसमें मदद कर दे हमारी। तो ये बताया गया कि बस तेरे बारे में जो सच्चाई प्रकट हो रही है, जैसी भी है, उसे यथाभूत जैसी हुई वैसे जान, जैसी हुई वैसे जान, कुछ मत कर। तो आंख बंद करके बैठ जाओ, पालथी मार के आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो क्योंकि बाहर का कोई आलंबन हमको लेना नहीं है, मुंह बंद कर लो क्योंकि मुंह से कुछ उच्चारण नहीं करना हमें। अब कुछ काम नहीं कर रहे, न कोई वाणी का काम कर रहे हैं, न कोई शरीर का काम कर रहे हैं, बैठे हैं। अब देखें अपने बारे में क्या सच्चाई प्रकट हुई, अनुभूति के स्तर पर, कल्पना नहीं, बिल्कुल कल्पना नहीं, क्या घटना घटी। तो पहली घटना ये दिखाई देगी, ये महसूस होगा, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, बस शुरू कर दो यहीं से, सच्चाई के सहारे सहारे चलो। किम सचियारा हो विए, किम कूड़े तुट्टे पाल, झूठ नहीं आने दें, बिल्कुल नजदीक नहीं आने दें, कोई कल्पना नहीं, यथाभूत, यथाकृत नहीं, यथाकल्पित नहीं, यथावांछित नहीं, यथा आरोपित नहीं, यथाभूत जो हुआ, ये सांस आया तो आया, गया तो गया। सांस अगर लंबा है तो बस लंबा है, हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। सांस अगर छोटा है तो छोटा है, सांस की कसरत बिल्कुल नहीं। तो इस रास्ते चलने वाले लोगों ने समझाया
कि था पिया न जाई वो किता न हुई आपो आप निरंजन सोई आपो आप।
जो अपने आप हो रहा है उस पर थापिया न जाए, अपनी कोई मान्यता का आरोपण करना मत शुरू कर देना, कुछ थोपना नहीं उस पर, और कीता न जाए कुछ क्रिएट मत करने लगना। अपनी ओर से क्रिएट करोगे तो नेचुरल रियलिटी को नहीं देख पाओगे। हमको तो जो स्वाभाविक सत्य है उसका दर्शन करना है, नैसर्गिक सत्य का दर्शन करना है। जहाँ सांस की कसरत शुरू कर दी, इतना लंबा लो फिर रोको फिर छोड़ो, वो एक अलग विद्या है, उसके कोई निंदा नहीं है, उसके अपने लाभ होते हैं, प्राणायाम के अपने लाभ हैं, पर ये प्राणायाम से बिल्कुल भिन्न है। सांस के हलन चलन पर कहीं अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं हो, जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। बाईं नासिका से गुजरता है तो बाईं से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है, दोनों से गुजरता है तो दोनों से गुजरता है, न बाएं को दाहिना करेंगे न दाहिने को बायां करेंगे, जैसा है वैसा है, बस यही देखते जाएंगे। एक आलंबन है, चित्त को एकाग्र करने के लिए हमें आलंबन मिला और ये आलंबन हमारे साथ रहता हमेशा, और सच्चाई का आलंबन है, इसमें कोई कल्पना नहीं, कोई दार्शनिक मान्यता नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध सांस है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बस जैसे कोई तटस्थ भाव से देख रहा है, घटना घट रही है तटस्थ भाव से देख रहा है। तटस्थ भाव किसको कहते हैं, कि कोई तट पर स्थित है, तट पर बैठा है और नदियाँ बह रही है, अब नदी के बहाव में उसका कोई हाथ नहीं, न उस बहाव को तेज करता है, न उसे आस्ते करता है, न नदी का पानी मैला है तो उसे साफ करता है, न साफ है तो मैला करता है, बस तट पर बैठा हुआ देख रहा है नदी की घटना घट रही है। इसी तरह से ये सांस का प्रवाह चल रहा है और अपने मन को इस नासिका के दरवाजों पर लगा दिया, क्योंकि सांस यहीं से भीतर जाएगा यहीं से बाहर आएगा, इस दरवाजे पर पहरेदार की तरह बैठ गए, बस जैसा सांस आया जान लिया, जैसा गया वैसे जान लिया, बहुत सरल, करना कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है, सांस तो अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा, हम क्या कर रहे हैं, हम तो केवल दृष्टा भाव से बैठ गए यहाँ, हम उसको साक्षी भाव से तटस्थ भाव से जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, इससे अधिक सरल काम क्या होगा दुनिया में। लेकिन जब कभी हिम्मत करके 10 दिन के लिए आओगे तब देखोगे बड़ा कठिन काम है भाई, बड़ा कठिन, 2 सांस भी नहीं देख पाए कि वो भागा मन कहीं, फिर लाए, फिर 2 सांस नहीं देखे कि वो भागा, तो नया नया साधक घबराने लगता है, चिड़चिड़ा उठता है, अरे ये कैसा मन मेरा, इतना छोटा सा काम दिया, इतना सरल काम दिया, ये भी नहीं करता, बार बार भागता है, कभी यहाँ बंदर की तरह, कैसा मन। तो सिखाने वाला कहेगा नहीं, क्रोध नहीं करना, अपने आप पर भी क्रोध नहीं करना, अपने मन पर भी क्रोध नहीं करना, यथाभूत दर्शन करो, मन इस समय भटक गया, बस स्वीकार करो इस समय मेरा मन भटक गया, बस फिर आ जाएगा, फिर सांस के साथ, फिर भटक गया, इस समय मेरा मन भटक गया, फिर शुरू कर दो। तो यथाभूत जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है, मन को क्रोधित करने का स्वभाव तो पहले से ही था, अब साधना के नाम पर क्रोधित करने लगे, अरे इसी को तो निकालने आए भाई, मन का मैल निकालने आए, मन को और मैला करने लगे, तो समझने लगता है, धीरे 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 समझने लगता है। 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, थोड़ा सा मन शांत भी होने लगता है, देख रहा था अपने सांस को, अब और बहुत सी बातें सामने आने लगी, अपने मन के स्वभाव को देखने लगा कितना चंचल है, एक बात और सामने आई कि ये भागता तो जरूर है, 2 सांस 4 सांस देखे कि भाग गया, कहाँ भागता है, तो कहाँ कहाँ भागता है उसकी कोई लिस्ट नहीं रख सकता, कोई डायरी नहीं लिख सकता, इतनी जगह भागता है और डायरी लिखने भी नहीं देते वहाँ पर, तो कहाँ भागता है, तो देखेगा 2 ही क्षेत्र हैं उसके पास भागने को, या तो भूतकाल में भागेगा, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, या भविष्य में भागेगा, ऐसा हो जाए ऐसा न हो, ऐसा हो जाए ऐसा न हो, उसने ऐसा कह दिया, मेरा ऐसा अपमान कर दिया, तब तो कुछ कहते नहीं बना, अब क्या करके देखे, तो ईंटा का जवाब पत्थर से दूंगा, भूतकाल से झट भविष्य में गया, भूतकाल में गया भविष्य में गया, भविष्य में गया भूतकाल में गया, ओ तो अपने मन के स्वभाव को समझने लगा कि ये जब देखो तब भूतकाल में रमण करता है, जब देखो तब भविष्य में रमण करता है, ये वर्तमान में नहीं रहना जानता, रहना ही नहीं चाहता, और रहना तो होगा वर्तमान में ना, जीना होगा हमको वर्तमान में। हम भूतकाल में कैसे जिएंगे? भूतकाल तो गया, हमेशा के लिए गया। जो क्षण चला गया उसको किसी कीमत पर वापस खरीद करके फिर जीना चाहें असंभव बात है। और भविष्य तो भविष्य है, जब तक वर्तमान नहीं बन जाएगा उसमें कैसे जिएंगे? जीना तो वर्तमान में है, और मन ने ऐसी हालत बना ली कि जब देखो तब भूतकाल में रमण करता है कि भविष्य में रमण करता है। इसको जीना नहीं आता ना, जीने की कला नहीं आती ना, अरे इसलिए व्याकुल रहता है। एक बात समझ में आई? सांस को देखते देखते अपने बारे में सच्चाइयां प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। ये समझ में आया कि हमारे मन को जीना नहीं आता, वर्तमान के सच्चाई से दूर भागता है, भूतकाल में रमण करता है, भविष्य में रमण करता है। एक और सच्चाई सामने आएगी, जब जब भूतकाल में रमण करता है कि भविष्य में रमण करता है, किस तरह के चिंतन चलते हैं? बहुत तरह के चिंतन चलते हैं, लेकिन फिर उसके दो ही विभाजन होंगे। या तो कोई चिंतन प्रिय चिंतन चलेगा, ऐसा हुआ था बड़ा प्रिय हुआ था, या भविष्य का भी होगा तो ऐसा होगा तो बड़ा अच्छा होगा। या तो प्रिय चिंतन चलेगा, भूत का हो कि भविष्य का हो, या अप्रिय चलेगा, ऐसा हुआ था बहुत बुरा हुआ था, ऐसा भविष्य में ना हो जाए, प्रिय होगा अप्रिय होगा, प्रिय होगा अप्रिय होगा। तो देखिएगा जब जब प्रिय चिंतन चलता है तो बड़ा सुखद लगता है, और जब जब अप्रिय चिंतन चलता है बड़ा दुखद लगता है। तो कभी सुखद कभी दुखद, कभी सुखद कभी दुखद। और एक बात समझ में आएगी कि जब जब प्रिय चिंतन चला और वो सुखद लगा तो मानस के एक हिस्से ने प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी, रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ये तो बड़ा अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा, ये तो फिर हो जाए, ये तो बार बार हो, ये तो बार बार हो, ये तो बार बार हो, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, यूं करने लगा। जहां अप्रिय चिंतन चला, दुखद चिंतन चला, मानस के एक हिस्से ने प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी, ये तो बहुत बुरा, ऐसा फिर ना हो जाए, ऐसा कभी ना हो जाए, ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो देखिएगा जब जब मन ये मुहारनी लेता है, चाहिए चाहिए चाहिए, ये मुहारनी लेता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यही तो मैल है। चाहिए 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 करता है, इसका मतलब राग है। नहीं चाहिए नहीं चाहिए करता है, इसका मतलब द्वेष है। अरे प्रतिक्षण ये हो रहा है हमारे भीतर, प्रतिक्षण विचार चलते हैं, प्रतिक्षण जो विचार चलते हैं सुखद होते हैं दुखद होते हैं, सुखद होते हैं हम राग पैदा करते हैं, दुखद होते हैं हम द्वेष पैदा करते हैं। राग पैदा करें या द्वेष पैदा करें, हम तो हुए व्याकुल, अपनी समता खो दी, अपना मन का संतुलन खो दिया, अपने मन का सुख खो दिया, वास्तविक सुख खो दिया। खूब समझ में आएगा, और ये प्रवचनों से नहीं आएगा, पुस्तकों से नहीं आएगा, अनुभूति से आना शुरू होगा। और कितनी बातें आनी शुरू हो जाएंगी, चित्त एकाग्र हुआ, ये केवल एक छोटा सा लाभ हुआ, उससे बड़ा लाभ ये हुआ कि भीतर की सच्चाइयाँ हमारे सामने आने लगी। अपने बारे में क्या सच्चाइयाँ हैं, इस मन के बारे में क्या सच्चाइयाँ हैं, मन के विकारों के बारे में क्या सच्चाइयाँ हैं। देखेगा दो तीन दिन होते होते इस सांस का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। ऊपर ऊपर से तो लगता है ये सांस तो हमारे फेफड़ों की प्रक्रिया है, तो शरीर से संबंध है इसका, मन से क्या मतलब। लेकिन जब इस प्रकार की साधना करेगा, किसी नाम को रट करके चित्त को एकाग्र कर लेगा, किसी रूप को देख के चित्त को एकाग्र कर लेगा, तो ये सारा रहस्य सामने आएगा नहीं। क्योंकि एक वैज्ञानिक की तरह हमको तो सच्चाई का दर्शन करना है, धर्म का दर्शन करना है, और उसके टुकड़े कर करके, विभाजन कर करके, विश्लेषण कर करके, अनुभूतियों के स्तर पर जानना है। ये काम करेगा तो ये सारा कुछ होने लगेगा। तो देखेगा हमारे सांस का, किसी महापुरुष ने हमको शुद्ध सांस लेना क्यों सिखाया? क्योंकि हमारे सांस का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध, हमारे सांस का हमारे मन के विकारों से बहुत गहरा संबंध। ध्यान करते करते देखेगा कोई पुरानी बात याद आई और किसी पर गुस्सा जागा, गुस्सा जागा, मन ही मन गुस्सा जागा, और देखता है कि सांस ने अपनी स्वाभाविकता खो दी, अब स्वाभाविक सांस नहीं है, जरा सा तेज हो गया, जरा सा भारी हो गया, वो गुस्सा मन से निकल गया फिर स्वाभाविक हो गया। इसी प्रकार मन में किसी कारण से वासना जागी, कि भय जागा, कि अहंकार जागा, सांस ने अपनी स्वाभाविकता खो दी, और वो भी निकल गया विकार, फिर स्वाभाविक हो गया। अरे तो हमारे सांस का हमारे मन से, हमारे मन के विकारों से कितना गहरा संबंध है। और हमको तो अपने मन के विकारों तक पहुंचना है, उन्हें निकालना है ना। खाली मन को ऊपर ऊपर से सुला देने से बात नहीं बनी भाई, हमको तो विकारों से मुक्त होना है। तो इसलिए इस सांस का सहारा दिया गया, शुद्ध सांस का सहारा। कल इसके आगे और देखेंगे कि शुद्ध सांस के चाहरे चलते 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 केवल चित्त एकाग्र करने की बात नहीं है, वो तो है ही साथ साथ, चित्त के मालिक बनते जा रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ चित्त को विकारों से विमुक्त करने की बात शुरू हो गई। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे खूब समझ में आएगा, अपने बारे में जो सच्चाई है वो खूब समझ में आएगी, काम करने से आएगी। केवल बुद्धि विलास से कुछ होता नहीं। अगर केवल प्रवचन सुन करके लोग अपने विकारों से विमुक्त हो जाते, दुखों से विमुक्त हो जाते, तो अपने प्रदेश के लोग तो कब के मुक्त हो गए होते। बचपन से सुनते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अरे धर्म के कितनी बातें सुनते हैं, अनुभव नहीं हुआ ना, अनुभूति पर नहीं उतरा ना। रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत वर्णन सुना उसका, बहुत बातें सुनी उसकी, क्यों मीठा है ये भी सुना, उसमें चीनी पड़ी इसलिए मीठा है, अरे जबान पर नहीं रखा ना, जबान पर रखे बिना मीठा हम क्या जाने, उस मिठास का हमें क्या लाभ हुआ। धर्म बहुत महान है, बहुत महान है, बड़ा कल्याणकारी है, मुक्ति देने वाला है, होगा हमारे किस काम का, हमने तो धारण नहीं किया ना, हमने तो अनुभव नहीं किया ना। आज के सभा में जो जो आए वो अवश्य समय निकालेंगे, अपने जीवन के 10 दिन खो नहीं रहे हैं। जब 10 दिन में से गुजरोगे तब लगेगा कि अरे हमारे जीवन के ये 10 दिन तो सबसे महत्वपूर्ण 10 दिन थे। एक ऐसी बड़ी विद्या, सारा जीवन उससे हम दूर रह जाते, उस विद्या का कोई लाभ ही नहीं ले पाते। ऐसी विद्या जो हमें सारे दुखों से मुक्त कर दे, भव भव के संसरण से मुक्त कर दे, भव भव के दुखों से मुक्त कर दे, इस विद्या से वंचित रह जाते, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। जो जो आज की धर्म की सभा में आए वो सब समय निकाल करके अपने मंगल को साध लें, अपने कल्याण को साध लें, अपनी स्वस्ति मुक्ति साध लें, स्वस्ति मुक्ति साध लें। हम गृहिणी लोग बहुत व्यस्त हैं, इस व्यस्तता में यदि आप टीवी द्वारा विपश्यना का ज्ञान दे दें, हम थोड़ा इसको समझ पाने में समर्थ हो सकेंगे। सचमुच गृहिणी बेचारी बहुत व्यस्त होती है, इतनी जिम्मेदारियां उसके सिर पर है, पर किसी पुरुष से पूछो वो कहता मैं बड़ा व्यस्त हूँ, दिन भर कितने काम में लगा रहता हूँ। अरे भाई व्यस्त हैं तो भी दुखी तो है ना, भीतर तनाव तो है ना, विकार तो जागते हैं ना। तो आदमी कितना ही व्यस्त हो, जब बीमार होता है तो अस्पताल जाना पड़ता है ना। तो यही मान के 10 दिन चले आओ कि हमें अपने आप को स्वस्थ करने के लिए इस धर्म के अस्पताल में जाना है। अगर टीवी से बात समझ में आ जाती, इन प्रवचनों से बात समझ में आ जाती, तब तो न जाने कितने लोग आसानी से तर गए होते, हमको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत होती। कोई साथ होना चाहिए, जब तुम काम करोगी और तुम्हें बताया जाएगा यूँ करो, करते करते कहीं भटक गई, गलत रास्ते चलने लगी, तो कोई मार्गदर्शक चाहिए जिनको सही रास्ते ले आए। इसलिए एक बार 10 दिन तो किसी मार्गदर्शक के पास रहकर ही काम सीखना चाहिए, उसके बाद हम अपने मालिक, किसी गुरु के चंगुल में नहीं कभी पड़ना, अपने मालिक आप अत्ता ही यत्नो नाथो, पर रास्ता तो मिल जाए, इसलिए आना जरूरी है। क्या रोग केवल चित्त के विकृति से ही आता है? नहीं, शरीर के रोग भी होते हैं जिनका आधार बिल्कुल शरीर है, और चित्त के रोग भी होते हैं, लेकिन बहुत से शरीर के रोग ऐसे होते हैं जिनका आधार चित्त है, साइकोसोमेटिक रोग होते हैं। इस तरह के चित्त के आधार वाले जो रोग होते हैं वो चित्त निर्मल होने पर, चित्त के स्वस्थ होने पर अपने आप दूर हो जाते हैं। पर रोग निकालने के लिए कभी भी विपश्यना में नहीं आना। सबसे बड़ा रोग यही है कि हम अपने मन में विकार जगाते हैं, इस रोग से मुक्त होने के लिए आना, बाकी रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। स्वर्ग और नरक के अस्तित्व के बारे में आपके विचार, इनका अस्तित्व है या नहीं? जब विपश्यना करोगे तो स्वयं देखोगे कि ये स्वर्ग हमारे भीतर ही है, ये नरक हमारे भीतर ही है। जब जब मन विकारों से विकृत होता है तो भीतर जलने लगते हो, ये नरक की ज्वाला भीतर देखोगे, और जब जब मन निर्मल होकर के मैत्री करुणा सद्भावना में भरता है तो वो स्वर्गीय सुख, वो ब्राह्मी आनंद अपने भीतर ही अनुभव करने लगोगे। उसको अनुभूतियों से जानो, यूँ केवल श्रद्धा से मान लोगे तो बात क्या बनेगी, उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई मेरी पत्नी को बलात्कार करे और शील का पालन किस प्रकार किया जा सकता है? कोई आदमी अत्याचार करे, कोई सबल आदमी किसी दुर्बल आदमी पर अत्याचार करे और हम कहें कि हम तो बड़े विपश्यना वाले हैं, वो अपना कर्म भुगते, तो धर्म नहीं समझ में आया। हम सारा बल लगा करके उस आक्रमण करने वाले को दूर करेंगे, जो आक्रांता को, जिस पर आक्रमण हो रहा है उसको बचाएंगे, सारा बल लगाएंगे। पहले भी लगाते थे, विपश्यना के बाद भी लगाएंगे। फर्क ये पड़ जाएगा कि विपश्यना नहीं करने पर उस आक्रमण करने वाले के प्रति मन में बड़ा क्रोध जागेगा, द्वेष जागेगा, दुर्भावना जागेगी, और विपश्यना करने के बाद उतना ही बल प्रयोग करेंगे, भीतर प्यार जागेगा, करुणा जागेगी। अरे ये नासमझ है, इसे होश नहीं है क्या कर रहा है, दूसरे की हानि तो करता ही अपनी हानि कर रहा है, और इसको दूसरी कोई भाषा समझ में नहीं आती, इसको शक्ति की ही भाषा समझ में आती है, इसलिए मुझे शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। शक्ति का प्रयोग वर्जित नहीं है धर्म में, चित्त हमारा बिल्कुल करुणा से भरा हो, मैत्री से भरा हो। आप ईश्वर परमेश्वर का जिक्र तो करते हैं, परंतु उसके अस्तित्व के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका विश्वास क्या है, वो बताएं। भाई हम ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले हैं, पर ये नकली ईश्वर के अस्तित्व को नहीं, ये काल्पनिक ईश्वर के अस्तित्व को नहीं, हमारे लिए तो सत्य ईश्वर है और परम सत्य ही परमेश्वर है। भीतर जो सच्चाइयां प्रकट हो रही हैं, कहे कबीर हरि ऐसा रे, जब जैसा तब तैसा रे, जिस समय जैसा है उस समय का वही हरि है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। बस उस सच्चाई को देखते चले जाओ, धर्म का दर्शन हो रहा है, सत्य का दर्शन हो रहा है, धर्म का दर्शन हो रहा है, तो ईश्वर का दर्शन हो रहा है। यों करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाओगे जो शरीर और चित्त के पड़े है, परम सत्य है, उसका साक्षात्कार होते ही परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया। वो होना चाहिए, केवल स्वीकार करने से बात नहीं बनती। सुख शांति और आनंद क्या फर्क है, ये अनुभूति कैसे होती है? जिस आदमी ने कभी मिठाई खाई नहीं और उसे कहें कि गुड़ का मिठास ऐसा होता है, रसगुल्ले का ऐसा होता है, क्या समझेगा? मुंह में मिठाई रखो तब समझ में आएगी ये सारी बातें। भीतर सुख कैसे मालूम होता है, आनंद कैसे मालूम होता है, ये सारा कुछ अनुभूति पर उतारोगे तो खूब समझ में आएगा। ये लंबे प्रश्न ना आए तो अच्छा है भाई, छोटे में लिखा करो। कल आपने कहा कि प्रकृति यानी स्वभाव ही धर्म है, मनुष्य में होने वाले अहंकार, क्रोध, हर्ष, विषाद आदि आदि, क्या वे सब प्राकृतिक हैं या कृत्रिम हैं? अगर प्राकृतिक हैं तो शील की आवश्यक क्यों है, अगर कृत्रिम है तो स्वाभाविक से क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न। आग का अपना स्वभाव है, वो जलाती है, आग का अपना स्वभाव वो जला करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आग के इस स्वभाव का हम प्रयोग करके उससे अपना भोजन पकाते हैं, उससे उष्णता प्राप्त करते हैं। प्रकृति के नियम तो अपनी जगह हैं, प्रकृति के नियम की वजह से हमने अपने अबोध अवस्था में ऐसा स्वभाव बना लिया कि क्रोध जगाए जा रहे हैं, क्रोध जगाए जा रहे हैं, प्रकृति का नियम हम व्याकुल हुए जा रहे हैं, व्याकुल हुए जा रहे हैं। पर प्रकृति का ये भी तो नियम है कि अगर हम क्रोध से छुटकारा पाते हैं तो व्याकुलता से छुटकारा पाते हैं, सुख शांति अनुभव करेंगे, तो हम प्रकृति के उस नियम का पालन करेंगे और ये जो हो रहा है इससे दूर होंगे, ये प्रकृति के नियम को समझ करके अपनी समझदारी के साथ अपने कल्याण का रास्ता चुनेंगे। बिजनेस करते हुए हम अधिक से अधिक नफा करना चाहते हैं, क्या ये ठीक नहीं है? ज़्यादा नहीं है तो कितना परसेंट तक नफा लेना चाहिए? बिजनेस करने वाले लोगों से, क्योंकि मैं भी उसमें से गुजरा हूँ इसलिए खूब जानता हूँ कि विपश्यना के रास्ते चलने वाला व्यक्ति, धर्म के रास्ते चलने वाला व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो एक तो ये बात व्रत की तरह ले लेगा कि जो मेरा ग्राहक है वो मेरा अन्नदाता है, उसका दिया हुआ अन्न खाता हूँ मैं, मेरे घर में मुनाफा उसके हाथ से आता है, उसकी ओर से आता है, उसको कभी धोखा नहीं दूंगा, न क्वालिटी में, न क्वांटिटी में, किसी प्रकार उसको धोखा नहीं दूंगा, तो धर्म के रास्ते चलने लगा। अब धोखा तब देते हैं कि माल तो हल्का देते हैं, दाम ऊंचा लेते हैं, वो बेचारा विश्वास से ले जाता है, धर्म की बात नहीं हुई। तो इतना इतना सीखें तो समझेंगे काम शुरू हो गया। और उसके बाद दूसरी बात ये कि जो जितना कमाए, ज़्यादा कमाने वाला अपनी कमाई का ज़्यादा परसेंटेज लोक कल्याण में लगाए, थोड़ा कमाने वाला अपनी कमाई का थोड़ा परसेंटेज लोक कल्याण में लगाए। ये जो दान की प्रवृत्ति है ये हमारे भीतर से अहंकार को दूर करेगी, अन्यथा धन इकट्ठा करते करते इतने अहंकारी हो जाएंगे कि धर्म से एकदम विमुख हो जाएंगे। मैं 3-4 शिविर ले चुकी हूँ और शिविर के तुरंत बाद मन शांत रहता है, लेकिन बाद में लोग मेरे बारे में अनाप शनाप कहते हैं तो मन व्याकुल ही नहीं होता बल्कि ध्यान करने की कई बातें मन में आकर व्याकुल होती है। तो बेटी कमजोरी रही ना तुम्हारी, जो लोग अनाप शनाप कहते हैं ये उनका प्रॉब्लम है, तुम उसे अपने सिर पर क्यों लेती हो? तुम मुस्कराओ, कह रहे जो अनाप शनाप कहता है वो अपने मन में विकार जगा के कहता है तो बेचारा बड़ा अज्ञानी है, बड़ा दुखियारा है। हर शिविर में शिविर के अंतिम दिन मैत्री भावना सीखी ना, उसके प्रति मैत्री भावना जगाओ, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तुझे भी धर्म मिल जाए, तुझे भी शांति मिल जाए। उसकी समस्या को लेकर अपने आप को व्याकुल क्यों बनाओ? विपश्यना को ठीक से समझो और उसका प्रयोग करो जीवन में। मैं एक पुराना साधक हूँ, जब मैं दूसरों को व्याकुल देखता हूँ तो उन्हें व्याकुलता का कारण और धर्म समझाने लगता हूँ तो वो मुझ पर उल्टे बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्याकुल साथियों को शांत करने का ठीक तरीका क्या है? उपदेश मत दो भाई, कोई तुम्हारा उपदेश सुनने को तैयार नहीं होगा। तुम उनके सामने एक उदाहरण पेश करो, वो तुम्हें देखें कि ये विपश्यना में जाके देखो कैसे बदल गया। पहले बड़ा क्रोधी था, इसका क्रोध निकल गया। पहले बड़ा अहंकारी था, इसका अहंकार निकल गया। बड़ा व्याकुल रहता था, व्याकुलता कम हो गई। तुम्हारे में आए हुए ये सुधार देख करके लोग अपने आप विपश्यना की ओर आएंगे। यही एक तरीका है लोगों को विपश्यना की ओर ले आने का, दूसरा कोई नहीं। क्या मन को नियंत्रण करने से शारीरिक या अन्य प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? अथवा मन चित्त के विकृति से कौन कौन सी बीमारियाँ आ सकती हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे बड़े मन की बीमारी यही है कि वो विकार जगाता है। विकार जगाता है तो बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। मन की ये अस्वस्थता शरीर पर भी प्रकट होती है, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए मन को स्वस्थ करना जरूरी है। ये विपश्यना यही कराती है, मन के विकार दूर करती है, मन स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है उसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो विपश्यना करके देखो किस तरह से मन को स्वस्थ करना सीखोगे। क्या कोई व्यक्ति ने पहले कोई दुष्कर्म किया हो और अब वे अपने मन को विकार रहित बनाता है तो क्या उसे पहले कर्म का दुष्प्रभाव पड़ता है? अवश्य। जो जो बीज डाले हैं पहले किसी जन्म में डाले हों, जिन जिन बीजों का वपन किया है, बोया है, वो अपना फल लेकर आएंगे ही। लेकिन विपश्यना की ये खूबी है कि जो जो बीज डाले हैं उनका फल जब आएगा, संसार में जब भी किसी को अपने दुष्कर्म का फल आता है तो पहले एक शरीर में संवेदना जागती है। किसी बुरे कर्म का बुरा फल बाहर आने वाला है तो हमने कभी भीतर देखना नहीं सीखा ना, तो तुरंत भीतर एक तरह की बड़ी दुखद संवेदना होगी, उसके बाद बाहर दुर्घटना घटेगी। ये प्रकृति का नियम है। तो अगर हमने इन संवेदनाओं को देखना सीख लिया विपश्यना द्वारा, तो वो बीज अंकुरित हुआ, फल देने का समय आया, एक संवेदना जागी, हम उसे साक्षी भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं, उसका बल क्षीण हो गया, वो निकल गया, छुटकारा हो गया। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, एक थोड़ी सी संवेदना के रूप में आई और निकल गई। हर बीज अपना फल तो देगा लेकिन हम उससे जल्दी छुटकारा पा जाएंगे, विपश्यना यही करेगी। अपने मन में जो ठीक लगता है उसी पर कायम रहना चाहिए। जो दूसरों की नज़र पर अहमवादी या घमंड करता है या दूसरों की भावना को कदर करते हुए समझौता कर लेना चाहिए। सत्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरों को बुरा लगता है तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा होगा जिसकी वजह से बुरा लगा। जो बात उनको नहीं पसंद है वो भी बड़े प्यार से कहोगे, मैत्री से कहोगे, करुणा से कहोगे तो उसका असर एक तरह का होगा। और तुम इस तरह से कहोगे मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तुझे कुछ होश नहीं है, तो उसका असर तो खराब होगा ही। तो विपश्यना ये सिखाएगी, 1-10 दिन के शिविर में परफेक्ट नहीं हो जाओगे, 1-10 दिन के शिविर में तो एक रास्ता मिलेगा और बहुत लंबा रास्ता है। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था आएगी कि जब किसी को समझाना होगा, कुछ कहना होगा, उसके पहले भीतर मैत्री जगाओगे, सबके प्रति खूब मैत्री जाग गई, मन मैत्री से भर गया, तब बोलना शुरू करोगे तो अपने आप उसका प्रभाव अच्छा होगा। अहंकार जगाओगे उसका प्रभाव कभी अच्छा नहीं होगा। सामाजिक कर्मकांड अलग लगते हैं पर माता पिता अपने वचन से हवाला देते हैं, मन बड़ा बेचैन रहता है। जैसे जैसे विपश्यना में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे लगेगा कि ये कर्मकांड थोथे हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जो कर्मकांड करते हैं उनके प्रति घृणा आनी शुरू हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगा। उनके प्रति खूब प्यार जागे और ये भी समझें कि हर कर्मकांड धर्म के रास्ते चलने के लिए कह कह गए सिखाने का काम हुआ करता था कभी, अब वो धीरे धीरे उसमें ऐसे जकड़ गए कि कह कह गए में ही रह गए, आगे की बात भूल गए बिल्कुल। तो उनसे घृणा नहीं करनी बल्कि उनके साथ सहयोग देना, लेकिन भीतर भीतर विपश्यना करते हुए धीरे धीरे उनको इस मोड़ पर ले आना जिससे कि वो आगे के कदम उठा सकें और वो भी डॉक्टरेट कर लें और अपने मन को निर्मल कर लें। कौन सा कर्म सही या गलत है उसकी पहचान कैसे हो, विपश्यना यही कराएगी। जिस कर्म को करते हुए भीतर मेरा मन मैला हुआ वो गलत ही है, जिस कर्म को करते हुए भीतर मेरा मन शांत है निर्मल है वो अच्छा ही है। इस प्रकार अपने आप को भीतर से जांचना शुरू करोगे तो अच्छाई बुराई को खूब समझने लगोगे। आर्य असंग का योगाचार और आर्य नागार्जुन का माध्यमिक शून्यवाद दर्शन से आप कितने प्रभावित हैं, ये लोग तो त्रियान की बात किया था, आप तो केवल धर्मयान की बात करते हैं। जो लोग चाहे नागार्जुन हो चाहे असंग हो चाहे कोई हो, अगर उसने अपने भीतर सच्चाई का दर्शन किया है और उस सच्चाई को प्रकट करता है तो कल्याणकारिणी है, उसका नाम चाहे महायान लो चाहे तंत्रयान लो चाहे कुछ भी लो, लेकिन भीतर से अनुभव हुआ नहीं और केवल बुद्धि के स्तर पर विवाद कर रहे हैं तो धर्म की बात नहीं हुई, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कितनी सही बात क्यों ना हो, अगर केवल विवाद के लिए है तो उससे कल्याण नहीं होता। तो मुझे तो इस रास्ते चलने का आकर्षण यही हुआ कि ये रास्ता जैसे ही चलना शुरू किया मन के विकार निकलने लगे और अनुभव द्वारा जानने लगा कि देख निकल रहे हैं मेरा कल्याण हो रहा है, मेरा विवाद में क्या मिलेगा। हम हज़ार लोगों से लड़ते रहे कि ये रास्ता अच्छा है, क्या मिलेगा हमें, लोग मान जाएंगे तो भी क्या मिलेगा, न मानेंगे तो भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अनुभव पर लोग लग जाएंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। धर्म अनुभव करने के लिए है, धारण करने के लिए है। आपने कहा कि धर्म व्यापक है और संप्रदाय अल्प है, धर्म उत्कृष्ट है और संप्रदाय संकृष्ट है, तो भगवान कुछ भी नीच है, क्योंकि बुद्ध ने बौद्ध संप्रदाय का स्थापना किया। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बुद्ध अगर बौद्ध संप्रदाय का स्थापना करता है तो समझ लेना चाहिए कि वो बुद्ध नहीं है, वो धर्म की स्थापना करता है। सारी की सारी बुद्ध वाणी में, जो कि लगभग 15,000 पृष्ठ की वाणी है, थोड़ा साहित्य नहीं है, कहीं बौद्ध शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा, न कोई बौद्ध दर्शन का उल्लेख मिलेगा, न किसी बौद्ध संप्रदाय का उल्लेख मिलेगा। उनकी शिक्षा केवल धर्म की शिक्षा, केवल धर्म सिखाएंगे और कुछ नहीं, धर्म जो सब पर लागू होता है, कुदरत का कानून वही सिखाएंगे। और उनकी शिक्षा को मानने वाले लोगों को वो कहेंगे धार्मिक है, धम्मिको, धर्मिष्ठ है, धम्मठो, धर्मी है, धम्मी, धम्मचारी, धम्म विहारी, बस ये 5-6 शब्दों का इस्तेमाल है, कहीं बौद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं। कोई बुद्ध कभी संप्रदाय स्थापित करे तो बुद्ध नहीं होगा, ये समझ लेना चाहिए, शुद्ध धर्म स्थापित करता है। सुना है विपश्यना साधना से कई तरीके के विकार और रोग निर्मूल हो सकता है, क्या यह सत्य है? तंत्र मंत्र के आधार पर एक दूसरे पर विकार करता है, यह भी निवारण हो सकता है? हम अपने भीतर के विकार निकालना शुरू कर दें और विपश्यना यही कराएगी, चित्त जितना निर्मल होता चला जाएगा, बाहर की कोई शक्ति, बाहर का कोई इस तरह का वाइब्रेशन जो हमें दुख दे सकता है वो हमारे नज़दीक नहीं आ सकता। धर्म की तरंगें इतनी बलवान होती हैं कि कोई भी दूषित तरंगें उसको छू नहीं सकती, छुएगी तो तुरंत समाप्त हो जाएंगी। धर्म में पकना जरूरी है, विपश्यना में पकना जरूरी है, फिर बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। रात में सोते वक्त शैतान आकर मन में बस में करने लगता है, उस वक्त क्या करें? शैतान के गुलाम मत बनो, अपने भीतर देवत्व जगाओ, अपने भीतर ब्रह्मत्व जगाओ, अपने भीतर सत्य जगाओ, धर्म जगाओ, कोई शैतान नज़दीक नहीं आएगा। जैसे जैसे भीतर सच्चाई का दर्शन करना आ जाएगा और चित्त विकारों से निर्मल होता जाएगा, कोई शैतानी शक्ति हमारे समीप नहीं आ सकती, क्योंकि उनको वो तरंगें बहुत खराब लगेंगी, अच्छा नहीं लगेगा, दूर भागेंगे, उससे दूर भागते चले जाएंगे। वन थिंग दैट इज रियली स्ट्राइकिंग माई माइंड इज दैट इन अवर लास्ट मिनट of our life, when we know that we are going to die, we must be feeling awful and very, very frightened. So what method should we apply in this situation? Those who are practicing vipassana and practicing properly and regularly, the record of all the information that we have got from such people, from their relatives, not a single person, except one or two about which the truth was not very clear, not a single person has died in a frightening way, in a fearful way. Not a single person has died in an unconscious way. Not a single person has died crying. Everyone who practices vipassana dies smilingly. Well, there is a promotion thereby. Why to cry? One feels very happy. At the last moment of the life is the moment to judge the mind, the quality of your mind. And that quality of your mind starts manifesting itself when the vipassana is strong inside. Murti puja karni chahiye ya nahi? Vipassana karne se hi jeevan mein mukti mil jayegi kya? Vipassana mukti ke liye hi hoti hai. Murti puja ko bura nahi kehte. Kisi mahapurush ki murti ya kisi devi ki, devta ki, ishwar ki, brahma ki, jisme shraddha ho, uski murti tumhare samne hai aur tum sir jhukate ho, phool chadhate ho, us waqt agar tumhare man mein ye bhav aaye ki ye devi, ye devta, ye ishwar, ye brahma mujhko ye de de, mujhko ye de de, तो भाई वो काम की बात नहीं हुई. और उस मूर्ति को देख करके तुम्हारे मन में ये भाव आए कि देख ये पूज्य क्यों हुआ, इसमें ये सद्गुण है, ये सद्गुण है, ये सद्गुण है, इसीलिए हम इसको पूजते हैं, वैसे सद्गुण मुझ में भी आए, ऐसी प्रेरणा जागे, तो मूर्ति पूजा बड़ी कल्याणकारिणी हो गई. तो मूर्ति पूजा को कल्याणकारिणी बनाए. इज इट फेयर टू क्लासीफाई ह्यूमन बींग अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड ग्रुप? एग्जाम्पल गिवन, ओ ग्रुप universal donor, A group partly donor, partly receiver, B group partly donor, partly receiver, AB group universal receiver. The blood is not that important. What important is your mind? Even one of a O group is full of impurities in the mind is a miserable person. The blood does not purify your mind. Your mind will purify the blood. So give importance to the mind and work to purify your own mind. Could you please explain karma kand and vikar? Karma kand jab hote hain to samajhna chahiye ki ye karma kand kyon chala hoga. Jyada tar karma kand aise hain jaise gangotri se ganga ka pani nikalta hai, kitna nirmal hai, kitna swachh hai, pardarshi hai. लेकिन बढ़ते चलते चलते बहते बहते ऊंचाइयों से नीचे गिरता है और फिर गंगा सागर तक पहुंचता है तो कितना मैला हो जाता है, वही पानी है. इसी तरह से कर्मकांड कोई अच्छे रूप में शुरू हुआ होगा लेकिन आज बिगड़ते बिगड़ते उसका ये रूप हो गया. हमको ये रूप नहीं बिगड़ने देना है, निर्मल रूप में रहे तो कर्मकांड दोष नहीं है. विपश्यना के साथ कर्मकांड करे तो कोई दोष की बात नहीं है. और विपश्यना को भूल करके, अपने मन को निर्मल करने की विद्या को भूल करके कर्मकांड से मुक्त हो जाएंगे ऐसा समझता है तो धोखे में है. आपने अपने बारे में क्या पाया, अपने आप में क्या पाया, अंतर्मुखी कैसे हूँ, यही सीखेंगे. अंतर्मुखी कैसे हूँ, अंतर्मुखी होने पर क्या पाया, गूंगे का गुड़ है भाई. गूंगा आदमी चाख चाख मुस्काय रे, बोल क्या पाएगा, मुस्कराएगा, लगेगा जरूर इसे कुछ मिल गया है, बोला नहीं जाता. इसलिए अनुभव करके देखो, उसी गुड़ को तुम भी चख के देखो और तुम भी मुस्कराने लगोगे. संसार में सबसे खतरनाक बात क्या है, सबसे खतरनाक बात हमारे मन के विकार हैं. इस भाई से कहो जरा अपने प्रश्न को छोटा करके कल दे दे, लंबे प्रश्न होते हैं तो समय खराब होता है लोगों का. विपश्यना का अर्थ क्या है, कल समझाएंगे, फिर भी थोड़े में समझें. विशेषेन पश्यति विपश्यना, विशेष रूप से देखता है, माने दृष्टा भाव से देखता है, साक्षी भाव से देखता है, जो कुछ अनुभव कर रहा है. देखने का मतलब अनुभव होता था पुराने अपने यहाँ, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, उसका स्वभाव देख रहा है. जो अनित्य है उसे अनुभूति से जानता, देख अनित्य है ना, अनित्य है ना, यूँ अनुभूति से जानता है तो विपश्यना हो रही है. और किस तरह ये की जाए कल इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से 10 दिन अपना समय देकर ही समझ पाओगे. एक बाधा जो अपनी और अपने परिवार भरण पोषण के लिए निरही प्राणी का संहार करते हैं, क्या वे हिंसा पाप के भागी होते हैं? अवश्य। और बहुत से साधन हैं जिनसे कि अपना भरण पोषण किया जा सकता है। किसी निरीह प्राणी की हत्या करके हम अपना भरण पोषण क्यों करें? कोई सेना और पुलिस में रह करके शील और सदाचार की पालना किस प्रकार कर सकता है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि इनको किस प्रकार के व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है। बहुत से पुलिस के लोग और मिलिट्री के भी कई लोग विपश्यना में आते हैं। एक पुलिस एकेडमी में एक शिविर लगा जिसमें सब इंस्पेक्टर से लेकर DIG तक के लोग बैठे। विपश्यना हमेशा कल्याणकारिणी होती है। जिनके सिर पर जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों की वजह से वो व्याकुल रहता है, तनाव से भरा रहता है, विपश्यना तनाव निकालती है, व्याकुलता दूर करती है। उनको जो अपने फैसले लेने पड़ते हैं तुरंत लेने पड़ते हैं, ऐसी परिस्थिति आ गई अभी फैसला लेना पड़ेगा और मन उनका व्याकुल है तो जल्दी फैसला कर नहीं सकते, करेंगे तो गलत फैसला करेंगे। विपश्यना से मन निर्मल होने लगेगा, सही फैसला करेंगे, तुरंत फैसला करेंगे, अच्छा फैसला करेंगे, अपने लिए भी कल्याणकारी होगा, औरों के लिए कल्याणकारी होगा। विपश्यना सबके लिए कल्याणकारिणी है। हाउ कैन ए हंग्री मैन कंट्रोल इज माइंड? वेल, इट इज ट्रू, इफ वन इज सो हंग्री वन कैन नॉट प्रैक्टिस विपश्यना। समबडी केम टू बुद्ध, ए वेरी हंग्री पर्सन, एंड वेन ही वॉज सो हंग्री बुद्ध सेड फर्स्ट गिव हिम फूड and then only I will teach him Dhamma. Therefore, people who come to the Vipassana courses, very poor people who don't have a proper livelihood, they are below the poverty line. Such people come to Vipassana, they are given free food, there is no charges there. They get their food, they get all the accommodation, all the necessary facilities of life, and they meditate. Then only one can meditate. Unless these facilities are provided, Vipassana practice is not successful. स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। हम तो यही अर्थ करते हैं भाई इसका कि मानव का अपना एक धर्म है, अपना एक स्वभाव है, मनुष्य ही है जो अंतर्मुखी हो करके सच्चाई को देख सकता है, अपने विकारों को देख सकता है, धर्म को देख सकता है और विकारों से मुक्त हो सकता है। ये दूसरे प्राणी नहीं कर सकते। तो हम दूसरे प्राणियों का जीवन जीने लगें तो परधर्म हो गया तो बड़ा भयावह है। वैसे लिखने वाले ने ये दूसरे ही भाव से कुछ लिखा, लेकिन हमको इसी अर्थ में लेना चाहिए ताकि मंगलकारी अर्थ हो। विपश्यना के शिविर में मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्तियों को भी शामिल करने की व्यवस्था है या नहीं? सुना है ऐसे व्यक्ति भी ठीक हो सकते हैं। मन के रोगी सभी हैं जिनका मन अपना संतुलन बिल्कुल खो चुका। विपश्यना से लाभ तो होता ही है, लेकिन किसी की ऐसी अवस्था है कि उस पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, उसको सेग्रेगेट करके औरों से अलग रख करके उसे सिखाया जाता है, तो मैनेजमेंट से जहाँ शिविर लग रहे हों उनके व्यवस्थापकों से पहले पूछ लेना चाहिए कि किस तरह के आदमी को हम लाना चाहते हैं, उसका इंटरव्यू हो जाए, उसके लिए व्यवस्था हो सके तो अवश्य लाना चाहिए, लाभ होता ही है। ओसो रजनीश, आप जैसे ही धर्म सभा में जाकर के बहुत धार्मिक प्रवचन करते थे, लोगों को प्रेरित भी करते थे, आप और रजनीश की धार्मिक व्याख्यानों में क्या फर्क है या नहीं? किसी दूसरे के बारे में हम क्या कहें भाई? और वो बेचारा अब चला गया, उसके बारे में क्या कहें? वो जीवित होता और जब जीवित था तो हमारे मतभेद थे। हमारे लिए शील प्रमुख है, बिना शील अगला कदम नहीं उठ सकता, ये प्रमुख भेद है। मेरी माँ को वात रोग से बहुत दर्द है, उनको विपश्यना शिविर में ध्यान के लिए लाऊं क्या? किसी शरीर के रोग को दूर करने के लिए किसी विपश्यना शिविर में नहीं आना चाहिए। जैसे मैं अपने गुरु के पास गया तो एक बड़ा भयंकर माइग्रेन रोग था मुझे, जो दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर सके। तो जब उनके पास गया और उनसे कहा कि मैं माइग्रेन का रोगी हूँ और सुना है विपश्यना से ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा चले जाओ, हम नहीं लेते, जाओ किसी अस्पताल में। अरे धर्म का अवमूल्यन हो गया। ऐसा शुद्ध धर्म जो तुम्हारे सारे भव भव के दुखों को मुक्त कर देगा, दूर कर देगा, उसका उपयोग करना चाहते हो सिर दर्द को दूर करने के लिए? धर्म का डिवेल्यूएशन हो गया, हम नहीं सिखाएंगे तुमको। अपने मन को निर्मल करने के लिए आते हो तो आओ, ये तो बाई प्रोडक्ट है, मन निर्मल होगा अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लक्ष्य लेकर मत आओ। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के रोग को दूर करने के लक्ष्य नहीं आए, मन के विकार दूर करने के लक्ष्य आए, जो जो रोग मन से संबंधित शरीर पर आए हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, वो लक्ष्य न हो हमारा। क्या आपने निर्वाणिक अवस्था का साक्षात्कार कर लिया है? किसको निर्वाण कहते हैं? वाण कहते हैं जलने को, और जलना बुझा उसको निर्वाण कहा। तो भाई इतना राग से जल रहा था, इतना द्वेष से जल रहा था, इतना मोह से जल रहा था, जितना जितना जलना बंद हुआ उतना उतना निर्वाण हुआ ना। और यों करते करते ही आदमी पूर्ण निर्वाण अवस्था पर पहुंचता है, और ये रास्ता उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए ही है। मानव सभी एक होने के बावजूद भी अनेक जाति संप्रदायों में बंटा है। इसी प्रकार हिंदू लोग अपने आप को आर्य कहते हैं, लेकिन गुरुजी आर्य का मतलब क्या है? क्या सभी हिंदू आर्य हैं या सभी आर्य हिंदू हैं? उस दिन समझाया ना कि आर्य शब्द अपने यहाँ जिस अर्थ में आज इस्तेमाल होता है वो उस अर्थ में नहीं होता था। आर्य कहते थे संत को जिसने चित्त निर्मल कर लिया, विकारों से मुक्त हुआ, वो आर्य हुआ। अब अपने आप को हिंदू कहने वाला भी आर्य हो सकता है, बौद्ध कहने वाला भी, जैन कहने वाला भी, ईसाई कहने वाला भी। मन को निर्मल करें और उस अवस्था पर पहुँचे कि जहाँ पहुँच करके मन की निर्मलता कायम रहने लगे तो आर्य हो गया। बुद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता नहीं स्वीकारी जाती, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। यदि आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती है तो पुनर्जन्म कैसे होता है? जब करोगे साधना, इन गहराइयों में जाओगे अपनी सच्चाई देखने की, इन दार्शनिक बातों को एक और रखोगे, आत्मा है नहीं है, ईश्वर है नहीं है, है तो ऐसा है कि वैसा है, ये सारी बातें एक और रखोगे और जो अनुभव हो रहा है उसी पर चलोगे, तो एक बात सामने आएगी कि प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है और प्रतिक्षण जन्म हो रहा है। प्रतिक्षण मरता है, जन्मता है, मरता है, जन्मता है, ये क्रम चल रहा है। एक मृत्यु ऐसी होती है जिसका शरीर से संबंध टूट जाता है, फिर भी वो क्रम चल रहा है। चित्त की संतति उसी प्रकार चलती है। ये अनुभव से जानोगे तब बात समझ में आएगी, विवादों से नहीं समझ में आएगी। विपश्यना करने से क्या क्रोध कम होता है? अगर क्रोध कम नहीं होता तो विपश्यना विपश्यना नहीं हुई। पुनर्जन्म पर आपका क्या विश्वास है? प्रतिक्षण पुनर्जन्म हो रहा है। आप कहते आए हैं कि विपश्यना को व्यवहार में उतारना चाहिए, प्रॉब्लम को फेस करके। एक साधक के नाते कृपा करके ये सलाह दीजिए कि जब मैं अध्ययन में बैठ जाऊं तो ग्रॉस सेंसेशन दिखाई पड़ता है और जगत का संस्कार उभर कर मानस में घेर लेता है, मैं क्या करूं? उसे भी साक्षी भाव से देखो, तटस्थ भाव से। जो उभरा है वो अनित्य है, नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ध्रुव नहीं है। बट विच इज़ द बेस्ट एंड होली रिलीजन? वेन यू थिंक ऑफ रिलीजन एज राइट्स, रिचुअल्स, प्रेयर्स, सेरेमनीज, देन इट इज़ फार अवे फ्रॉम धर्म। बट इफ यू टेक रिलीजन एज धर्म, लॉ ऑफ नेचर, देन इट इज़ ओनली वन, देन यू कांट से विच। धर्म इज ओनली वन, दिस डिफरेंट सेक्ट्स आर मैनी, बट धर्म इज ओनली वन, एंड यू कांट से दिस धर्म इज करेक्ट एंड दैट इज नॉट करेक्ट। बाह्य मन और अंतर्मन क्या है, कृपया बताने की कृपा करें। ये जब जाओगे विपश्यना करते हुए देखोगे तब पता लगेगा कि भीतर ही भीतर जो कुछ हो रहा है वो ऊपर वाले मन को बिल्कुल नहीं मालूम। बीच में एक बहुत मोटी दीवार आई हुई है, वो दीवार टूटेगी तब सारा का सारा मानस समझ में आने लगेगा और सारे के सारे मानस की सफाई होने लगेगी। हाउ टू बी फ्री फ्रॉम स्ट्रेस? जस्ट कम फॉर 10 डेज, प्रैक्टिस विपश्यना एंड यू विल कम आउट ऑफ योर स्ट्रेस। मन को वश में रखने के लिए प्राणायाम का क्या भूमिका हो सकती है? अच्छी भूमिका है। जैसे कहा ना, बहुत तरह के अपने यहाँ तरीके चले मन को वश में करने के। ये तरीका हम इसलिए इसका सुझाव देते हैं कि केवल वश में नहीं करना, उसके आगे भी हमें चलना है और आगे जाकर के अपने बारे में पूरी सच्चाई जान करके जहाँ विकारों का उद्गम होता है, जहाँ विकार संचित हैं, वहाँ पहुँच करके उनको निकालने का काम शुरू करना है। उसके लिए ये विद्या बहुत जरूरी है, इस रास्ते चलना पड़ेगा। कल जरा और